अध्याय चार इतिहास दृष्टि उत्थान मूलक नैरन्तर्य क आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी का दृष्टिभेद ख पांडित्य की लोकोन्मुक्ता शास्त्र और लोक का द्वंद ग काल निर्धारण मध्यकालीन बोध की आधुनिकता आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी का दृष्टिभेद। आचार्य द्विवेदी के इतिहास बोध पर विचार करते समय यह स्वाभाविक है कि उनके पूर्ववर्ती आलोचक इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि को भी सामने रखा जाए ताकि उनके बीच सहमति असहमति के बिंदुओं के आधार पर आचार्य द्विवेदी के ऐतिहासिक निरंतर्य को स्पष्ट किया जा सके। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि दोनों ही आचार्यों का इतिहास लेखन लगभग एक जैसी चुनौतियों का परिणाम है जो अध्ययन अध्यापन संबंधी कठिनाइयों के बीच से उनके सामने उपस्थित हुई थी। अंतर यह है कि जहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल काशी में रहकर विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों की समस्या से टकरा रहे थे, वहीं शांति निकेतन में बैठे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे साहित्य इतिहास की आवश्यकता महसूस कर रहे थे जो संपूर्ण भारतीय साहित्य से विच्छिन्न न हो ताकि अहिंदी भाषी साहित्यिकों को भी हिंदी साहित्य का परिचय कराया जा सके। कहना न होगा कि उद्देश्यगत सीमा विस्तार के साथ ही काशी और शांति निकेतन ये परंपरागत भावबोध का अंतर भी उनकी इतिहास दृष्टि के निर्माण में एक प्रभावी पक्ष रहा है। यह आकस्मिक नहीं है कि कतिपय प्रतिष्ठित आलोचकों ने आचार्य द्विवेदी के इतिहास लेखन को आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन का पूरक प्रयास बताया है और उन्हें एक दूसरे की सापेक्षता में देखने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसे सर्वांग सत्य मान लेना बहुत उचित नहीं प्रतीत होता। यह सही है कि आचार्य शुक्ल छायावाद युग की रचनाशीलता से प्रभावित हैं और आचार्य द्विवेदी प्रगतिशील आंदोलन से, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि छायावाद की रचनाशीलता सपाट नहीं बल्कि अंतर्विरोधों से युक्त है और आचार्य शुक्ल उन अंतर्विरोधों को किस दृष्टि से देखते हैं। इसके साथ ही प्रेमचंद की रचनाशीलता के परिप्रेक्ष्य में रखकर उनकी दृष्टिगत सीमा का मूल्यांकन किए बिना भक्ति आंदोलन के अंतर्विरोधों को नजरअंदाज कर एक गहरी दृष्टि से देखना बेमानी होगा। आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि और उनके काव्य विवेक को ठीक से समझने के लिए उनके इतिहास ग्रंथ के आरंभिक वाक्यों और इतिहास के प्रथम संस्करण में वक्तव्य की उन पंक्तियों को समझ लेना आवश्यक प्रतीत होता है जिसमें उन्होंने अपने इतिहास लेखन का प्रारूप और उसके उद्देश्य को स्पष्ट किया है। अपने इतिहास के आरंभ में ही वे लिखते हैं, इनोपेट का जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जाहिर है कि आचार्य शुक्ल के इस कथन में साहित्य की समाज सापेक्षता और उसकी विकासमान प्रक्रिया की ओर जो संकेत किया गया है वह निश्चय ही उनके आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचायक है। उनकी काव्य विवेक की सामाजिकता को प्रमाणित करने के लिए इन पंक्तियों को बार बार उद्धृत भी किया जाता है। सवाल यह है कि आगे चलकर भक्ति आंदोलन के स्रोत विवेचन तथा आदिकालीन एवं पूर्व मध्यकालीन कवियों के काव्य मूल्यांकन में इसका सम्यक अनुपालन क्यों नहीं हो पाया। इस प्रतिज्ञा भंग का कारण उनकी मूल प्रतिज्ञा में बहुत स्पष्ट है। प्रथम संस्करण के वक्तव्य में उन्होंने लिखा है, 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया, अतः एक नियत समय के भीतर यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। इन्होंने कहा मंद इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि छात्रों के लिए तैयार किए गए संक्षिप्त नोट के आधार पर जो कच्चा ढांचा आचार्य शुक्ल ने बनाया था उसमें काल विभाजन और विभिन्न शाखाओं की रचनाओं के मूल्यांकन का आधार परिस्थितियों के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्ति थी। आगे चलकर काव्य मूल्यांकन में यही कच्चा ढांचा प्रमुख आधार बना और हिंदी शब्द सागर के पूरा हो जाने पर उसकी भूमिका के लिए भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया तो एक निश्चित समय के भीतर ही आचार्य शुक्ल ने इस कठिन चुनौती को स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी सीमा को स्पष्ट कर दिया, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जनता के चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब खंडित हो गया और उसका सामाजिक प्रभाव भी दो टूक होकर शिक्षित और अशिक्षित जनता के दो वर्गों में विभाजित हो गया। क्या कारण है कि आज के वस्तुवादी आलोचक एक स्वर से जिस क्रांतिदर्शी साहित्य को अपनी जनवादी परंपरा की कीमती विरासत समझते हैं और आचार्य हजर प्रसाद द्विवेदी ने जिसे भारतीय चिंताधारा के स्वाभाविक विकास के रूप में महिमामंडित किया है, वह आचार्य शुक्ल की शिक्षित जनता पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता। भाषा और साहित्य के विकास की दिशा को एक निश्चित समय के भीतर ही तय कर देने की व्यवस्था के कारण उनके स्वाभाविक विकास की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को आचार्य शुक्ल नज़रअंदाज कर देते हैं और इतिहास के कच्चे ढांचे में पूर्व निर्धारित प्रतिमान का सहारा लेकर सरलीकरण का मार्ग ग्रहण करने को विवश हो जाते हैं। फलस्वरूप तद्भवीकरण जो भाषा विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया है तत्समीकरण में अवरुद्ध हो जाती है और जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब साहित्य भी भद्रलोक की शिक्षित जनता के रुचियों और संस्कारों तक सीमित हो जाता है। यही कारण है कि संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का यह विकास इस शाखा ज्ञानश्रेय में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता है। इनोटेड कामाबंद हिंदी साहित्य का इतिहास। और आगे उन्होंने कम से कम इतना तो स्वीकारा है कि अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा उपकार है। संतों का यह उपकार क्या है, आचार्य शुक्ल की शिक्षित जनता कौन है, इसका उत्तर भी जायसी ग्रंथावली की भूमिका में मिल जाता है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, यूनाइटेड कामा, 100 वर्ष पहले कबीर दास हिंदू और मुसलमान दोनों के कट्टरपन को फटकार चुके थे। पंडितों और मुल्लाओं को तो नहीं कह सकते, पर साधारण जनता राम और रहीम की एकता मान चुकी थी। यूनाइटेड कामा, जायसी ग्रंथावली, भूमिका। उपकार का एक रूप तो यही है कि साधारण जनता हिंदू मुसलमान के जातिगत भेदभाव को भूलकर एक दूसरे के सामने अपना अपना हृदय खोलने लगी थी और न मानने वाले संभवतः पंडित और मुल्ला थे जिनके हृदय अभी भी एक दूसरे के सामने बंद पड़े थे और इसी सांप्रदायिक कट्टरता के चलते कबीरदास फटकार चुके थे। सवाल यह उठता है कि क्या सांप्रदायिक कट्टरता को फटकारने वाली वाणी प्रतिक्रियावादी कही जा सकती है? लेकिन कबीर के क्रांतिकारी विचार इतने बहुमूल्य क्यों न हो, जब भाषा ही चदुक्कड़ी और अटपटी हो तो पंडिताओं भाषा की हिमायती संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय को वह कैसे प्रभावित कर सकता है? सगुण भक्त कवियों को नूतन भक्ति मार्ग से आचार्य शुक्ल इतने आह्लादित हैं क्यों हैं, इसे आसानी समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, इनोट कामा, ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्र के विद्वानों पर सिद्धों और योगियों की वाणियों का कोई असर न था। ब्रह्मसूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता और भाषाओं की परंपरा विद्वत मंडली के भीतर चली चल रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ। इनोटिकाबंद हिंदी साहित्य का इतिहास। निष्कर्ष है कि ना तो सिद्धों और संत कवियों का साहित्य अशिक्षित, अर्धशिक्षित जनता या सामान्य जन समुदाय की चित्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करने वाला है, और शास्त्रों की रूढ़ियों, जातिवाद, ग्रस्तता और व्याचारों पर प्रचार करने के बावजूद उसमें विकास का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता, और ब्रह्मसूत्र, उपनिषद तथा गीता की भाष्य परंपरा का शास्त्रीय आधार लेकर चलने वाले सगुण काव्य में परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का नूतन विकास हुआ, जिससे शास्त्रज्ञ विद्वान मंडली उल्लसित हो उठी। इसे नूतन विकास मान लेने का कारण यह है कि ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता के बृहत्त्रयी का समर्थन पाकर यह श्रुति सम्मत वैदिक मार्ग सिद्ध हो गया और निर्गुण भक्ति मार्ग को ज्ञानेश्वरी शाखा नाम देकर आचार्य शुक्ल खुद चक्कर में पड़ गए हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान के नाम पर जो थोड़ी बहुत वेदांत चर्चा मिलती है वह सुनी सुनाई बातों पर आधारित होने के कारण अव्यवस्थित और भक्ति के जो नाम मात्र की है वह सूफियों से प्रभावित है। लिहाजा शुद्धता के अभाव में इस परंपरा बाह्य भक्ति को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? वैसे यह परंपरा पूजक शास्त्रज्ञों की बड़ी पुरानी समस्या है, जिसकी कई जगहों पर आचार्य द्विवेदी ने विस्तृत चर्चा की है। बौद्ध धर्म के ह्रास और ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के समय किसी भी मतवाद को वेद बाह्य घोषित कर जन समुदाय में उसकी हीनता को प्रमाणित करने की परंपरा रही है। पाश्चात्य मत को वेद बाह्य घोषित करने वाले शंकर को बाद में प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाने लगा। इसलिए कबीर जैसे शास्त्र ज्ञान से वंचित संतों की अटपटी वाणी में शास्त्र ज्ञान की शुद्धता तलाश करने वाले सांप्रदायिक शास्त्र ज्ञानियों का उत्तर देते हुए आचार्य द्विवेदी लिखते हैं, इनोटेड कामा, सांप्रदायिक शास्त्र ज्ञान को अधिक महत्व देने वाले पंडितों को कभी कभी कबीर की उक्तियों में उजड़पन और उटपटांग बातों का मिल जाना असंभव नहीं है, पर अगर वे धीर भाव से विचार करें तो उन्हें मालूम होता है कि उस युग में अर्थहीन जात पात के ढकोसलों पर कड़े से कड़ा आघात करना लोक का अमंगल नहीं था। आज भी वह जंजाल वर्तमान है और आज का महापुरुष भी, चाहे वह कोई हो, इस पर आघात करने को बाध्य है। इनोट कामाबंद, भूमिका। यहाँ दोनों आचार्यों की विचारधारा और लोक मंगल जैसे प्रतिमानों का दृष्टिगत भेद भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। वस्तुतः आचार्य शुक्ल वर्तमान की मूल दृष्टि से परंपरा को न देखकर अतीत की दृष्टि से वर्तमान की व्याख्या करते हैं। यही कारण है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अभाव में वे परंपरा के स्वाभाविक विकास का सुसंगत मूल्यांकन नहीं कर पाते। भक्ति आंदोलन के उद्गम का कारण उस युग के सामाजिक सांस्कृतिक अंतर्विरोधों में न ढूंढकर सांप्रदायिक शास्त्र ज्ञान के अतिरिक्त आग्रह के चलते वे केवल भक्ति के नूतन विकास सगुणों को भक्ति को ही विशेष महत्व देते हैं और उसकी पारंपरिक संगति बैठाने के लिए उन्हें हिंदू मुस्लिम संघर्ष का परिणाम मान लेते हैं। इस प्रकार बाहरी राजनीतिक परिस्थितियों को ही जिम्मेदार ठहराने के कारण आचार्य शुक्ल हिंदी भक्ति काव्य के स्वाभाविक विकास की सही दिशा में नहीं पकड़ पाते और यही उनकी इतिहास दृष्टि की सीमा भी स्पष्ट हो जाती है। वे लिखते हैं, इनवर्ट कामा, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। इनवर्टेड कॉमा बंद। हिंदी साहित्य का इतिहास। इस इतिहास दृष्टि के निर्माण में शास्त्र ज्ञान के आग्रही और सामंती आदर्श पर प्रतिष्ठित आचार्य शुक्ल की लोक मंगलाकारी आलोचना दृष्टि का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके चलते अपने युग को गौरवान्वित करने वाला हिंदी भक्ति काव्य एक तो हिंदू जाति की संपत्ति है, दूसरे वह हिंदू मुस्लिम संघर्ष की प्रतिक्रिया से उजा जबदी हुई मानसिकता का काव्य है, क्योंकि अपने पौरुष और शक्ति से निराश हिंदू जाति के लिए भगवान की गुहार करने के सिवा दूसरा विकल्प नहीं रह गया था। इसीलिए लोक रक्षा पर आधारित अवतारवाद का सहारा लेकर लिखे गए सगुण भक्ति काव्य में भक्ति का नूतन संदेश मिलता है और वही सच्चा काव्य है। उसमें भी लोक रक्षा के सुसंगत विकास के कारण तुलसी का काव्य लोक संग्रही और लोक जीवन की मानवीय भावभूमि पर आधारित सूर्य के सुर सागर में लोक संग्रह का भाव है, क्योंकि उन्होंने गीता महाभारत के लोक रक्षण कृष्ण की शास्त्रीय परंपरा को बहुत कुछ खंडित कर डाला है। अतः स्वाभाविक विकास भी रास दिखाई पड़ता है और परंपरा बाह्य आचरण के कारण सूरदास को दंड मिलना ही चाहिए, इसीलिए उनके प्रेम को आचार्य शुक्ल ने लोकवाय घोषित कर दिया। संत कवियों के यहाँ सामंती आदर्श पर स्थापित न तो वह लोक संग्रह है न लोक मंगल, क्योंकि वे लोक रक्षा विरोधी है। इसलिए परंपरागत भक्ति मार्ग या नूतन विकास अंतर्विरोधों से मुक्त नहीं है और इसका समाधान आचार्य शुक्ल केवल तात्विक समीक्षा के द्वारा करना चाहते हैं। भक्ति मार्ग के इस नूतन विकास की सुसंगत शास्त्रीय संगति तो वीरगथात्मक रचनाओं में बनती रही, इसीलिए लोक रक्षा के शास्त्रीय प्रतिमान से उनकी इतिहास संगति बैठाते हुए आचार्य शुक्ल सामंतों की चटुकारिता में लिखी गई चारणों की स्तुतिपरक रचनाओं को हिंदी साहित्य में इसलिए स्वीकार कर लेते हैं कि उनमें उन्हें छात्र धर्म, वीर धर्म, राजधर्म का तेजस्वी कर्म सौंदर्य दिखाई पड़ता है, जो आगे छलांग लगाकर राम और कृष्ण के छात्र धर्म को जगाकर उनके कर्म सौंदर्य में अपना नूतन विकास पाता है और बीच में पढ़ने वाली अपभ्रंश की रचनाएं तथा नाथ सिद्धों की बानियां अशिक्षित जनता के चित्त वृत्तियों को प्रभावित करने के कारण लोक रक्षा के प्रतिमान से बाहर पड़ जाती हैं। कहना न होगा कि समाजशास्त्रीय विश्लेषण के अभाव में अपनी दृष्टिगत सीमा के कारण आचार्य शुक्ल काव्य मूल्यांकन में अपेक्षित तटस्थता नहीं बरत पाते, इसलिए अनेक जगहों पर वे कठिनाई पड़ जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि उनकी मानवतावादी चेतना के अनुप्राणित है, इसीलिए उनकी साहित्य यात्रा सामान्य मनुष्य की जय यात्रा का उद्घोष है। शिक्षा का सवाल उनके सामने गौण है, मुख्य है। मनुष्यता आचार्य द्विवेदी ने सिद्धों नाथों और संतों के साहित्य को खोई हुई परंपरा दी और विस्तृत परंपरा के पुनर्निर्माण द्वारा भारतीय अस्मिता की एक सूत्रता का संधान किया। सच पूछा जाए तो आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के आरंभ में साहित्य को परखने का जो सूत्र दिया था वह उनके इतिहास लेखन में केवल भाषा बनकर रह गया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसका सुसंगत पालन ही नहीं किया बल्कि उसे पुनर्परिभाषित कर उससे सर्वथा अभिन्न इतिहास दृष्टि का नवनिर्माण किया। सांप्रदायिक शास्त्र ज्ञान के अतिरिक्त आग्रह और अभिजात संस्कारों के वृथा मोह को रौंदता हुआ उनका पारदर्शी इतिहास बोध मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ साफ देख लेता है तथा ब्राह्मण और त्याग की संतुलित दृष्टि से मनुष्य समाज भाषा साहित्य संस्कृति कला अभिरुचि इतिहास और पुरातत्व की अपेक्षा में अपनी परंपरा का मानवतावादी मूल्यांकन करता है। यही कारण है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि में एक उत्थान मूलक निरंतर है, जिसके चलते वे हिंदी भक्ति आंदोलन के सामाजिक अंतर्विरोधों को ठीक से पहचान कर उसकी सुसंगत व्याख्या करते हैं। इतिहास को सांप्रदायिक दृष्टि से देखने वाले ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों और जाने अनजाने उनके मत को पुष्ट करने वाले भारतीय इतिहासकारों का स्पष्ट विरोध करते हुए आचार्य द्विवेदी लिखते हैं, यूनाइटेड कामावन, दुर्भाग्यवश हिंदी साहित्य के अध्ययन और लोक चक्षु गोचर करने का भार जिन विद्वानों ने अपने ऊपर लिया है वे भी हिंदी साहित्य का संबंध हिंदू जाति के साथ ही अधिक बतलाते हैं और इस प्रकार अनजान आदमी को दो ढंग से सोचने का मौका देते हैं। एक यह कि हिंदी साहित्य एक हतदर्प पराजित जाति की संपत्ति है, इसलिए उसका महत्व उस जाति के राजनीतिक उत्थान पतन के साथ अंगांगी भाव से संबद्ध है और दूसरा यह कि ऐसा कभी हो तो भी एक निरंतर पतनशील जाति की चिंताओं का मूर्त प्रतीक है जो अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं रखता। मैं इन दोनों बातों का प्रतिवाद करता हूँ। अगर ये बातें सही मान ली जाएं तो भी यह कहने का साहस करता हूँ कि फिर भी इस साहित्य का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि 10 वर्षों तक 10 करोड़ कुचले हुए मनुष्यों की बात भी मानवता के प्रगति के अनुसंधान के लिए केवल अनुपेक्षणीय ही नहीं बल्कि आवश्यक वस्तु ज्ञातव्य वस्तु है। ऐसा करके मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जो आज है। इन्होंने कामा बंद हिंदी साहित्य की भूमिका। पहले तो आचार्य द्विवेदी ने मध्यकालीन भक्ति काव्य को हतदर्प जाति का साहित्य मानने से इनकार किया और हिंदी साहित्य को हिंदू जाति के साथ संबद्ध करके देखने वाले संकीर्ण दृष्टि का प्रतिवाद किया। उन्होंने इस अवधारणा का भी जोरदार खंडन किया कि भक्ति काव्य मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम है। इसके लिए उनके पास ठोस आधार है। पहली बात तो यह कि सूरदास और तुलसीदास आदि वैष्णव कवियों की समूची कविता में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का भाव नहीं। जिस समाज को ये भक्तगण सुधारना चाहते थे उससे विदेशी धर्म का कोई प्रभाव इन्होंने लक्ष्य नहीं किया था। कामाबंद हिंदी साहित्य की भूमिका। और दूसरी यह कि यदि भक्ति आंदोलन को मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया मान लिया जाए तो भक्ति का उदय उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में क्यों हुआ। इस संबंध में विचार करते हुए लिखते हैं, इनपुट कामा, यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावना को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर प्रकट हुई वह दक्षिण में। ये नोटेड कामन हिंदी साहित्य उसका उद्भव विकास। यही यह भी पूछा जा सकता है कि यदि भक्ति का मुसलमानों के आक्रमण और उनके अत्याचार के कारण पराजित हिंदू जनता का काव्य है तो गैर हिंदू सूफी संत इसमें कैसे आ गए। यह सच है कि जब एक जीवित जाति किसी दूसरी जीवित जाति के संपर्क में आती है तो दोनों का एक दूसरे से कुछ न कुछ प्रभावित होना स्वाभाविक है। आचार्य द्विवेदी ने मुस्लिम प्रभाव को केवल प्रभाव के रूप में स्वीकार किया है, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। कबीर और निर्गुणियों संतों के जाति पाति विरोधी विचारों अवतारवाद मूर्ति पूजा आदि के खंडन की चेष्टा को देखकर इसे मुसलमानी जोश बताया गया और कई बार तो उसे मुसलमानी धर्म के प्रचार का हथकंडा भी कहा गया। आचार्य द्विवेदी ने इस भ्रम का निवारण करने के लिए हजारों वर्ष के इतिहास के छानबीन करते हुए इसे हिंदी साहित्य के स्वाभाविक विकास के रूप में रेखांकित किया। उनके अनुसार निर्गुण संतों के उग्र विचार ही नहीं उनकी सारी रीति नीति साधना पद्धति छंद और भाषा भी भारतीय आचार्यों के देन है। उनका कहना है कि जाति वर्णन के भेद से जर्जरित भूत इस देश में जो कोई महासाधक आया उसे यह कथा खटकी है। ऐसे बहुत से प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें जाति भेद को उखाड़ देने पर जोर दिया गया है, पर संस्कृत की पुस्तकें साधारणतया ऊंची जातियों के लोगों द्वारा लिखी गई होती हैं जिनमें लेखक केवल तटस्थ विचारक की भांति रहता है। स्वयं नीच कहे जाने वाले वंश में उत्पन्न नहीं होने के कारण उनमें भुक्तभोगी की उग्रता और तीव्रता नहीं होती। सहज यानी और नाथ पंथ के अधिकांश साधक तथा कथित निच जातियों में उत्पन्न हुए थे, अतः उन्होंने इस अकारण नीच बनने वाली प्रथा को दार्शनिक की तटस्थता के साथ नहीं देखा। इनोटेड कामाबंद हिंदी साहित्य की भूमिका। इस अकारण नीच जाने वाली वर्ण व्यवस्था के प्रति सात्विक रोष और उससे प्रभावित जन समुदाय के प्रति आचार्य द्विवेदी की सहानुभूति उनकी उदारता और सहिष्णुता का स्पष्ट प्रमाण है। एक ओर तो इन रचनाकारों को शास्त्र ज्ञान विहीन और सुने सुनाए ज्ञान का आतंक जमाने वाला कहा गया और दूसरी ओर उनकी रचनाओं में दार्शनिक चिंतन का शुद्ध मतवाद ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस विडंबनापूर्ण स्थिति पर विचार करते हुए आचार्य द्विवेदी लिखते हैं, ये नोटेड कामा, कभी कभी हास्यास्पद भाव से कबीर को शास्त्र ज्ञानहीन सुनी सुनाई बातों का गढ़ने वाला आदि कह दिया जाता है। मानव युग में जुलाहे मोची धुनी और अन्यान नीची कही जाने वाली जातियों के लिए शास्त्र और वेद का दरवाजा खुला था और कबीरदास आदि ने जानबूझकर उनकी अवहेलना की थी। हिंदी साहित्य की भूमिका। जाहिर है कि ऐसा लिखते समय उनके सामने आचार्य शुक्ल तो थे ही, शाखी शब्दी दोहरा कही कहानी उपखान भगत निरूपण अधम कवि निदही वेद पुराण का उद्घोष करने वाले गोस्वामी तुलसीदास भी रहे होंगे। कहना न होगा कि आचार्य द्विवेदी शास्त्र ज्ञान और उनके तर्क जाल से मुक्त होना अनुभव साचा संतों के लिए श्रेयस्कर मानते हुए लिखते हैं। यूनाइटेड कामा इन संस्कारों से वंचित रहने के कारण है वे सब जगह से सत्य को सहज ही ले सकते थे। वे रूढ़ियों और मिथ्या विश्वास के शिकार नहीं हुए। वे उस बेमतलब की निजत्व बुद्धि के भी शिकार नहीं हुए जो दूसरों की लिखी हुई बात को तुर मड़ोड़ कर कहने में दूसरों से ग्रहण करने के महादोष से अपने को मुक्त समझती है। उनमें ग्रहण करने की भी शक्ति थी और कराने की भी शक्ति थी, इसीलिए वे महान थे। ध्यान देने की बात है कि आचार्य द्विवेदी यहाँ संतों के शास्त्रगत रूढ़ियों और मिथ्याविश्वास विरोधी स्वर की गतिशीलता को रेखांकित करते हुए उन्हें महान इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सामाजिक अनुभव के सहज विवेक के साथ ही समय की सही दिशा पहचान कर अपने लोकव्यापी विद्रोही चेतना के छरा संग्राहकता की सृजनात्मक शक्ति खो चुके शास्त्र मतों की लोकोन्मुखी प्रक्रिया को वेगवान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कहना न होगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संतों के इस नए मूल्यांकन के माध्यम से अपने ही पांडित्य की लोकोन्मुखता को प्रमाणित किया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य द्विवेदी के गहन अध्ययन और स्वतंत्र चिंतन का परिणाम है। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथाओं को आदिकाल के प्रमुख प्रवृत्ति मानकर उसे वीर गाथा काल कहना ज्यादा उपयुक्त समझा था तथा नाथों सिद्धों की वाणियों को कोरी धर्मोपदेश की रचनाएं बताकर उन्हें हिंदी के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया। आचार्य द्विवेदी ने वीर गाथा कही जाने वाली रचनाओं का मूल चरित्र राजस्तुति परक बताया है क्योंकि उनकी लड़ाइयों वैवाहिक कथाओं में तथ्य की अपेक्षा कल्पना ही अधिक है। उन्होंने राहुल संकृत्यान द्वारा सुझाए गए नाम सिद्ध सामंत काल को इसलिए ज्यादा उपयुक्त बताया है कि उसमें सिद्धों की धार्मिक उपदेश वाली रचनाओं और सामंतों की स्तुति परक रचनाओं को समाहित किया जा सकता है। आचार्य द्विवेदी ने अपने सृजनशील इतिहास विवेक से नाथों सिद्धों की रचनाओं को इसलिए साहित्य के अंतर्गत स्वीकार किया कि एक तो वह क्रांतिकारी संत साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और विचारों के प्रेरणा स्रोत हैं, दूसरे यह कि इनोटेड कामा इस अंधकार युग को प्रकाशित करने योग्य जो भी चिंगारी मिल जाए उसे सावधानी से जिलाए रखना कर्तव्य है क्योंकि वह बहुत बड़े आलोक की संभावना लेकर आई होती है। उसके पेट में केवल उस युग के रसिक हृदय के धड़कन का ही नहीं, केवल सुशिक्षित चित्त के संयम और सुचिंतित वाक्पाटों का ही नहीं, बल्कि उस युग के संपूर्ण मनुष्य को उद्भाषित करने की क्षमता छिपी होती है। हिंदी साहित्य का आदिकाल। निसंदेह आचार्य प्रसाद द्विवेदी यहाँ साहित्य को नए सिरे से परिभाषित करते हैं। साहित्य केवल सुशिक्षित चित्त के संयम और सुचिंतित वाक्पाटों की अभिव्यक्ति नहीं है और न ही उसमें केवल रसिक हृदय की धड़कन सुनाई पड़ती है, बल्कि सच्चा साहित्य तो वह है जिसमें उस युग के संपूर्ण मनुष्य को उद्भाषित करने की क्षमता होती है। आचार्य द्विवेदी की साहित्य दृष्टि में परंपरा बोध इतिहास विवेक सांस्कृतिक चेतना और लोकधर्मी भावभूमि को जो महत्व दिया गया है वह निश्चय आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि से भिन्न नवीन और सृजनशील है। परंपरा के भीतर में संभावनाओं की तलाश करने वाली यह ऐसी संतुलित और उदार दृष्टि है जिसमें के केंद्र में संपूर्ण मनुष्य है और वह आचार्य शुक्ल के संस्कृत बुद्धि और संस्कृत हृदय से कहीं ज्यादा सार्थक और महान है। यह वह दृष्टि है जो साहित्य को मात्र काव्य शास्त्रीय दृष्टि से देखने के विरुद्ध उसे समाज की अपेक्षा में देखने की सिफारिश करती है। मध्यकालीन कविता को देखने का यह नया प्रतिमान है जो आचार्य द्विवेदी की काव्य समीक्षा में सर्वतोभावेन विद्यमान है। आचार्य शुक्ल की दृष्टिगत संकीर्णता को लक्ष्य कर डॉक्टर नामोर सिंह ने लिखा है, इनवर्ट कामा, जो सुसंस्कृत है उसकी गाली भी साहित्यिक है, लेकिन जो असंस्कृत है उसकी डांट फटकार भी असाहित्यिक है। तुलसीदास यदि अलग जगाने वालों को नीच कहें तो वह काव्य है, लेकिन कबीर का यह कथन अशिष्ट गाली है। पांडे कौन कुमति तो हिला की, तू राम न जपहीं अभागी। इनवर्ट कामा इस मान्यता के चलते एक की दार्शनिक उक्तियां काव्य हैं और दूसरे की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। क्या इसलिए कि एक प्रभुवर्ग की संस्कृति के पक्ष में बोलता है और दूसरा उस संस्कृति का विरोध करता है? यह उठ कहाँ बंद दूसरी परंपरा की खोज। यही कारण है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रभुवर्गीय संस्कृति का प्रत्याख्यान करने वाले नाथों सिद्धों की रचनाओं को कोरा धार्मिक उपदेश या साहित्यिक शिक्षा मात्र कहे जाने का स्पष्ट विरोध करते हैं। उन्होंने अपने विवेक समझ संतुलित दृष्टि के कोरे धार्मिक उपदेशों वाली रचनाओं से उन रचनाओं को अलगाया है जिनमें धर्म एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम करता है। उनके अनुसार जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर रही हो। इस दृष्टि से अपभ्रंश की कई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं निसंदेह उत्तम काव्य है। हिंदी साहित्य का आदिकाल। यह आकस्मिक नहीं है कि आचार्य द्विवेदी धर्म की इस प्रेरक शक्ति को ही मध्यकालीन कविता की प्राणधारा के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए उनका कहना है कि धार्मिक साहित्य होने मात्र से किसी रचना को साहित्य से बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से उन्हें केवल आदिकाल से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि रामचरितमानस और पद्मावत भी साहित्य सीमा में नहीं घुस पाएंगे और कबीर की रचनाओं को भी नमस्कार कर देना होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों को सामाजिक महत्व को रेखांकित करते हुए विशेष रूप से पद्मावत के काव्य संदर्भ को जिस तन्मयता के साथ उद्घाटित किया है उस पर आचार्य द्विवेदी मुग्ध है। शुक्ल जी के प्रति श्रद्धा विभूत होकर वह लिखते हैं इन कवियों में सर्वश्रेष्ठ पद्मावतकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं जिनकी काव्य संदर्भ को चमत्कारिक रूप से उद्घाटन करने का श्रेय हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल को है। पद्मावत की प्रस्तावना में आपने जैसी काव्य मर्मज्ञता दिखाई है वैसी हिंदी तो क्या अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में कम ही मिलेगी। यह प्रस्तावना अपने आप में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है। हिंदी साहित्य की भूमिका। आचार्य शुक्ल के काव्य विवेक की प्रशंसा करने के साथ ही द्विवेदी जी की दृष्टि काव्य परंपरा के मूल्यांकन पर टिकी हुई है। उनकी दृष्टि में इन सूफी कवियों का महत्व विशेष रूप से इस बात में है कि इन साधकों ने हिंदी के एक विशेष प्रकार के साहित्य को लुप्त होने से बचा लिया। निश्चय ही एक टूटी हुई लोक परंपरा को जोड़ने वाले साहित्य का ऐतिहासिक महत्व है। आचार्य द्विवेदी ने सूफी काव्य परंपरा को व्यवधान युग के जन साहित्य का स्वाभाविक विकास मानते हुए लिखा। जनसाधारण का एक और विभाग जिसमें धर्म का स्थान नहीं था जो अपभ्रंश साहित्य के पश्चिमी आकार से सीधे चला आ रहा था जो गांवों के बैठकों में कथानक के रूप में और गान के रूप में चल रहा था अपेक्षित होने लगा था। इन सूफी साधकों ने पौराणिक आख्यानों के बदले इन लोक प्रचलित कथानकों का आश्रय लेकर ही अपनी बात जनता तक पहुँचाई। हिंदी साहित्य की भूमिका। जो लोग यह समझते हैं कि दोहा चौपाई में प्रबंध काव्य लिखने की परंपरा सूफियों को देने उनके भ्रम का निवारण करते हुए आचार्य द्विवेदी उसका उत्स सहज यानी सिद्धों की रचनाओं और अपभ्रंश काव्य के छंदों में तलाशते हैं और इस प्रकार उसे परंपरा का स्वाभाविक विकास के रूप में देखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि आचार्य शुक्ल ने न केवल निर्गुणिया संतों के प्रेम को सूफियों से प्रभावित बताया था बल्कि सूरदास के प्रेम पर भी सूफी प्रभाव को देखते हुए उसे लोक बाह्य घोषित किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संतों सूफियों और कृष्ण काव्य की प्रेमबद्धि को अपनी परंपरा के स्वाभाविक विकास के रूप में स्वीकार किया है। इसके लिए उन्होंने आगम ग्रंथों तंत्र साधना और अपभ्रंश की लोक परंपरा की गहरी छानबीन करनी पड़ी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्र परंपरा के ऋणियों से मुक्त होकर लोक धर्म और लोक परंपरा के भावभूमि पर आधारित हिंदी भक्ति काव्य हमारी जातीय साहित्य की परंपरा की कीमती विरासत है। इससे पराजित और निराश हिंदू जनता की कुंठा का कोई चिन्ह नहीं मिलता। दरअसल पराजय और निराशा का संबंध वर्णाश्रम धर्म के विनाश की चिंता से चिंतित हिंदू शास्त्रकारों धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़ियों को साधारण जनता के विरुद्ध इस्तेमाल करने वाले कुछ पढ़े लिखे सांप्रदायिक बुद्धिजीवियों तथा इन सबको संरक्षण देने वाले सामंतों एवं उनके सहायकों से रहा है। इनकी सुख सुविधा ऐश्वर्य वैभव में आवश्यक कमी आ गई थी। इनकी उदासी के राजनीतिक कारण हो सकते हैं किंतु बहुसंख्यक जनसमुदाय के दुख का कारण तो मुख्यतः सामाजिक अंतर विरोधों में विद्यमान था जिसकी व्यापक छानबीन आचार्य द्विवेदी ने की है। इतना तो डॉक्टर रामलीला शर्मा भी स्वीकार करते हैं कि साधारण जनता के दुख कुछ और थे। इस संदर्भ में विचार करते हुए वे लिखते हैं देश में विदेशी जातियों का आक्रमण और उनका शासन भी एक कारण था लेकिन वास्तविकता यह है कि सत्ता में सहायक और भाग लेने वाले देशी सामंत भी थे। उन सामंतों के देशी सहायक पंडे और पुरोहित भी थे। लेकिन उन्हें सहसा ज्ञानोदय होता है कि शुक्ल जी की सहानुभूति सामंतों के साथ जा रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें दरबारी कवि याद आते हैं उन्हें शुक्ल जी ने चुन चुन कर सुनाई है। डॉक्टर रामलीला शर्मा यह भूल जाते हैं कि आचार्य शुक्ल रीतकालीन कवियों की घोर श्रृंगारिकता और उन्हें आश्रय देने वाले सामंतों की विलासिता को इसलिए फटकारते हैं कि सामंत अपने राजधर्म वीर धर्म छात्र धर्म और वर्ण धर्म की रक्षा के दायित्व से चित होकर लोक धर्म से भी इन रचनाकारों को प्रश्रय देते हैं। यह दृष्टि सामंतवाद विरोधी कैसे हो गई। इससे डॉक्टर शर्मा ने सिद्ध किया कि इनफ्रेट का मां उनकी सहानुभूति देश रक्षा के उन ठेकेदारों के साथ न थी, फिर भी उनके विवेचन में देशी सामंतों की भूमिका हर जगह स्पष्ट नहीं है, इसीलिए उन्होंने निराशा का कारण मुस्लिम शासन बताया है। इनफ्रेट का बंद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। शुक्ल जी के विवेचन में देशी सामंतों की भूमिका हर जगह स्पष्ट क्यों नहीं है, इसे तो डॉक्टर रामराज शर्मा ही जाने। सामंतवाद के संबंध में शुक्ल जी के विचार प्रमुख बहुत स्पष्ट है। समाज में बढ़ते हुए पूंजीवादी प्रभाव से चिंतित आचार्य शुक्ल सामंती पुरोहिती प्रभामंडल के विनाश से दुखी होकर लिखते हैं। इनफ्रेट का राजधर्म वीर धर्म सब पर सोने का पानी फिर गया, सब टका धर्म हो गए। धन की पैठ मनुष्य के सब क्षेत्रों में करा देने से ब्राह्मण धर्म और छात्र धर्म का लोप हो गया, केवल मौलिक धर्म रह गया है। इनफ्रेट का बंद चिंतामणि भाग एक। पूंजीवादी युग को रास का युग मानते हुए आचार्य शुक्ल इसके विकास की दिशा भी स्पष्ट कर देते हैं। इनफ्रेट का जब तक यह व्यापारोन्माद दूर न होगा तब तक इस पृथ्वी पर सुख शांति न होगी, दूर हुआ अवश्य होगा। छात्र धर्म की संसार में एक बार फिर प्रतिष्ठा होगी, चोरी के बदला डगति से लिया जाएगा। इनफ्रेट का बंद चिंतामणि भाग एक। वर्ण धर्म के संरक्षक छात्र धर्म के अंदर राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का स्वप्न देखने वाले आचार्य शुक्ल का मोहभंग जल्दी हो जाता है, जब वह देखते हैं कि वर्णिक धर्म और छात्र धर्म में आपसी गठबंधन हो गया। आचार्य शुक्ल क्षुब्ध होकर किंचित आश्चर्य के साथ लिखते हैं, इनफ्रेट का इस सार्वभौम वर्णिक वृत्ति से उतना अनर्थ कभी न होता यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य में अपना लक्ष्य अलग रखती, पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। इनफ्रेट का बंद चिंतामणि भाग एक। इस पर टिप्पणी करते हुए नीलकांत ने उचित ही लिखा है, इनफ्रेट का इस विलक्षण संयोग की व्याख्या के लिए पुरोहिती भाववाद के पास ऐतिहासिक और समाजार्थिकी कारणों की जानकारी का घोर अभाव है, इसीलिए वाणिक वर्ग के प्रति आचार्य शुक्ल ने मिश्र भाव बना लेना उचित समझा। एक साथ ही उसके प्रति धिक्कार और धन्यवाद का भाव प्रकट करके अंतर्द्वंद के बोझ से अपना हृदय हल्का कर लिया। आखिर वाणिक धर्म भी तो एक धर्म है, सभी धर्मों का धारण करने वाला विश्वात्मा तो एक ही है। इनोटेड कामन प्रतिज्ञा। ध्यान देने की बात है, आचार्य शुक्ल के समकालीन कथाकार प्रेमचंद ने विश्व इतिहास की सही और स्वाभाविक दिशा को पहचानते हुए धर्म को स्वार्थ संगठन कहकर अनेक प्रकार से स्वर प्रहार किया। 1921 में जहाँ प्रेमचंद यह घोषणा कर रहे थे कि मैं लगभग बोल्शेविक वसूलों का कायल हो चुका हूँ, वहीं आचार्य शुक्ल 1921 में ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रभुओं द्वारा स्थापित नरेंद्र मंडल की प्रशंसा में छात्र धर्म का सौंदर्य जैसा मानववाद विरोधी लेख लिख रहे थे। रूसी क्रांति के विरोधी और लेनिन के महात्मापन का माखौल उड़ाने वाले आचार्य शुक्ल को लग रहा था कि इनफ्रेट का ऊंची श्रेणियों के कर्तव्य की पुष्ट व्यवस्था न होने से यूरोप में निजी श्रेणियों में ईर्ष्या द्वेष और अहंकार का प्राबल्य हुआ, जिससे लाभ उठाकर लेनिन अपने समय का महात्मा बना रहा। इनफ्रेट का बंद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। आचार्य शुक्ल यह समझते हैं कि भारत की वर्ण व्यवस्था में अधिकार संपन्न ऊंची श्रेणियों के कर्तव्य की जैसी पुष्ट व्यवस्था है, वैसे यूरोप के समाज में न तो होने के कारण समाज की साधारण जनता के आंदोलन को दबाया न जा सका और लेनिन अपने समय का महात्मा बन बैठा। सामंती पुरोहिती गठबंधन के दमन उत्पीड़न शोषण और अत्याचार को ऊंची श्रेणियों के कर्तव्य की पुष्ट व्यवस्था के रूप में गौरवान्वित करना किस प्रगतिशीलता के अंतर्गत आता है। दूसरी बात यह कि लेनिन के नेतृत्व में संगठित रूसी जनता के क्रांतिकारी मुक्ति संघर्ष में निची श्रेणियों की हीन भावना ईर्ष्या द्वेष और अहंकार का प्राबल्य ढूंढना पुरोहिती भाववादी दृष्टि का ही परिचायक है, क्योंकि वह वर्ग चेतन जनता का सकारात्मक वर्ग संघर्ष था। दुख तो तब होता है जब आचार्य शुक्ल की विरासत को मार्क्सवादी समीक्षा में विकसित करने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा इस पर टिप्पणी करते हुए कहने लगते हैं कि इनफ्रेट का शुक्ल जी ने यह शब्द आवेश में लिखे हैं, इस आवेश के कारण तुलसी के महत्व का गलत प्रतिपादन करने के जोश में वह अनेक असंगतियों में फंस गए। इनफ्रेट का बंद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। डॉक्टर शर्मा ने यह तो नहीं बताया कि जोश मजहबी जोश था या उसमें भिन्न कुछ और था। उनके विवेचन से यह भी नहीं स्पष्ट होता कि तुलसी के महत्व का गलत प्रतिपादन करते हुए अनेक असंगतियों में फंसने वाले आचार्य शुक्ल निष्कर्ष में सही निर्णय तक कैसे पहुंच गए। जहां तक मैं समझता हूं, आवेश और जोश में कही हुई बात में कोई तर्क नहीं होता, ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति प्रतिक्रियावादी होती है। सोचने की बात है कि आचार्य शुक्ल जैसा बौद्धिक और सजग आलोचक ऐसी बातें आवेश में कैसे कर सकता है। मेरी समझ में आचार्य शुक्ल की कमजोरी पर लिपापोती करने के कारण डॉक्टर शर्मा का अर्थापन स्वयं कमजोर पड़ गया है। सच तो यह है कि आचार्य शुक्ल ने कबीर और लेलिन की प्रतिभा को ठीक पहचाना था, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि लेलिन की प्रतिभा और क्रांतिकारिता ने रूस में जो चमत्कार किया है, वहाँ नाई बढ़ई आदि निची श्रेणियों का प्रभुत्व स्थापित हुआ है और साहित्य में गुणात्मक परिवर्तन आए हैं, वैसा कुछ परिवर्तन हिंदुस्तान में भी हो। दरअसल आचार्य शुक्ल जनता को दो वर्गों में, शिक्षित और अशिक्षित में बांट कर देखते हैं। इसलिए तुलसी के महत्व का गलत प्रतिपादन करने के कारण अनेक असंगतियों में फंस गए हैं। पढ़ी लिखी जनता के प्रति उनकी पक्षधरता और अशिक्षित जनता के प्रति उपेक्षा स्पष्ट है, और यह विभाजन उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय से बहुत भिन्न नहीं है। डॉक्टर शर्मा आचार्य शुक्ल को व्यवस्थावादी, हिंदू धर्म का प्रचारक और कर्मकांड का पक्षधर मानने से इनकार करते हैं, किंतु मुक्तिबोध की स्थापनाएं उनसे भिन्न है। निर्गुण सगुण भक्ति आंदोलन का अंतर स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, निर्गुण मत के विरुद्ध सगुण मत का संघर्ष, निम्न वर्गों के विरुद्ध उच्च वर्गीय संस्कारशील विरुचि वालों का संघर्ष था। नई कविता का आत्मसंघर्ष। आगे भक्ति आंदोलन के अंतर विरोध की चर्चा करते हुए मुक्तिबोध लिखते हैं, एक बार भक्ति आंदोलन में ब्राह्मणों का प्रभाव जम जाने पर वर्णाश्रम धर्म की पुनर्विजय की घोषणा में कोई देर नहीं होती, ये घोषणा तुलसीदास ने की थी। नई कविता का आत्मसंघर्ष। इसीलिए पंडित रामचंद्र शुक्ल जो निर्गुण मत को कोसते हैं, यह यूं ही नहीं, इसके पीछे उनकी सारी पुराण मतवादी चेतना बोलती है। नई कविता का आत्मसंघर्ष। आचार्य शुक्ल के प्रति मुक्ति बोध के मन में कम आदर भाव नहीं, किंतु वस्तु स्थिति की सच्चाई को सच्चाई के रूप में पाठकों के सामने रखना किसी भी जन पक्षधर रचनाकार और आलोचक की ईमानदारी का तगाजा है। आचार्य शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से कबीर के जन्मवादी संघर्ष को पुरोहिती सामंती समाज व्यवस्था के लिए खतरे की घंटे के रूप में सुना था। इस तथ्य को नकारना बेमानी होगा, आचार्य शुक्ल समाज में किसी तात्कालिक परिवर्तन के विरुद्ध है, इसीलिए बेहतर समाज व्यवस्था के परिवर्तन का भी कबीर, निराला और प्रेमचंद उनके लिए उतने प्रिय नहीं है जितने वर्ण व्यवस्था के पोषक गोस्वामी तुलसीदास। ध्यान देने की बात है कि आम आदमी के पक्षधर प्रगतिशील चेतना जब भी सक्रिय हुई उसके समानांतर प्रति आंदोलन खड़ा हुआ। कर के प्रतिक्रियावादी ताकतें सुधारवाद के नाम पर उसे दबाने का सुनियोजित षड्यंत्र रचती हैं। हिंदी आलोचना इस ऐतिहासिक सच्चाई को नजरअंदाज कर दिशाहीन हो सकती है। इस खतरे को लक्ष्य कर प्रगतिवादी आलोचकों को आगाह करते हुए मुक्तिबोध को लिखना पड़ा था। आश्चर्य की बात है कि आजकल प्रगतिवादी क्षेत्रों में तुलसी के संबंध में जो कुछ लिखा गया है उसमें जिन सामाजिक ऐतिहासिक प्रक्रिया के तुलसीदास जी अंग थे उनको जानबूझकर भुलाया गया है। पंडित रामचंद्र शुक्ल की वर्णाश्रम धर्मी जातिवाद ग्रस्त सामाजिकता और सच्चे जनवाद को एक दूसरे से ऐसा मिला दिया गया है मानो शुक्ल जी, जिनके प्रति हमारे मन में अत्यंत आदर है, सच्ची जनवादी सामाजिकता के पक्षपाती हो। नई कविता का आत्मसंघर्ष। जाहिर है कि मुक्तिबोध ने न केवल तुलसी के प्रणाम मतावलंबी समन्वयवादी दोहरी परंपरा का विरोध किया, बल्कि उसे पुष्ट करने वाले पंडित रामचंद्र शुक्ल की वर्णाश्रम धर्मी जातिवाद ग्रस्त सामाजिकता और सच्ची जनवादी सामाजिकता में सामंजस्य स्थापित करने वाले प्रगतिवादी समीक्षा के लिए के प्रति अपना आश्चर्य भी प्रकट किया है। कारण यह है कि तुलसी के मूल्यांकन में एक ऐतिहासिक सच्चाई को जानबूझकर भुला दिया गया है। इस प्रकार मुक्तिबोध तुलसी के मूल्यांकन में आचार्य शुक्ल और डॉक्टर रामलीला शर्मा दोनों से असहमत है। मुक्तिबोध की स्थापना का निष्कर्ष यह है कि निचली जातियों के बीच से पैदा होने वाले संतों के द्वारा निर्गुण भक्ति के रूप में भक्ति आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में पैदा हुआ, किंतु आगे चलकर ऊंची जाति वालों ने इसकी शक्ति को पहचान कर इसे अपनाया और क्रमशः इसे अपने विचारों के अनुरूप ढालकर कृष्ण और राम की सगुण भक्ति का रूप भी डाला, जिससे उसके क्रांतिकारी दांत उखाड़ लिए गए। इस प्रक्रिया में कृष्ण भक्ति में तो कुछ क्रांतिकारी तत्व बचे रह गए, लेकिन राम भक्ति में जाकर तो रहे सहे तत्व ही गायब हो गए। दूसरी परंपरा खोज डॉक्टर नामवर सिंह। यह आकस्मिक नहीं है कि गणों और मठों को तोड़ने के लिए अभिव्यक्ति का खतरा उठाने का आह्वान करने वाले मुक्तिबोध की स्थापनाएं आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी के ज्यादा निकट है। भारतीय साहित्य और शास्त्र ग्रंथों का आलोड़न उन्होंने चिंता पारतंत्र से मुक्त स्वतंत्र चिंतन के आधार पर किया है। यही कारण है कि उनके अनुभव सम्मत विवेकपूर्ण संतुलित दृष्टि के आधार पर उसके बाह्य अग्राह्य तत्वों का विश्लेषण करते हुए मनुष्य सत्य को मारने वाले शास्त्रों को उन्होंने वंचक घोषित किया। यही मनुष्य सत्य उनकी समुचित साहित्य साधना के केंद्र में स्थापित है। क्या अभिव्यक्ति का यह मौन खतरा उठाने के कारण ही उन्हें आजीवन संघर्ष नहीं करना पड़ा? शास्त्र ज्ञान संपन्न परम विद्वान और ज्योतिषाचार्य होने के बावजूद वे शास्त्रज्ञ पंडितों के लिए कभी स्वीकार्य क्यों नहीं हुए? वे कौन से ऐसे कारण थे जिनके चलते उन्हें शुद्ध ब्राह्मण कहने का एहसास बार बार झेलना पड़ा। अस्तु, यदि भाववाद की कोई क्रांतिकारी भूमिका हो सकती है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचनात्मक आलोचनात्मक संघर्ष को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हिंदी साहित्य को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने हिंदी आलोचना को एक उदार मानवतावादी वैज्ञानिक दृष्टि है। उनके इतिहासकार और आलोचक परस्पर ऐसे घुल मिल गए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलगाया नहीं जा सकता। स्वतंत्र चिंतन, समाजशास्त्रीय विश्लेषण, परंपरा के मूल्यांकन का संतुलित विवेक, गहरी कलात्मक अभिरुचि आदि उनके इतिहासकार आलोचक की प्रेरक शक्ति है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण वे अपने पूर्ववर्ती आलोचकों की अपेक्षा हिंदी साहित्य के मूल्यांकन में कहीं अधिक तटस्थ और संतुलित दिखाई देते हैं। अपनी दार्शनिक विचारधारा और वैष्णव संस्कारों के चलते आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोक मंगल के सामंती आदर्श में विश्वास करने वाले रसवादी आलोचक थे। गोस्वामी तुलसीदास को केंद्र में रखकर उनके आदर्श के आधार पर उन्होंने हिंदी आलोचना के विविध प्रतिमानों का निर्माण किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता यह है कि उनके मूल्यांकन के केंद्र में कोई रचनाकार नहीं, मुख्य है परंपरा और उसकी जीवन पृष्ठभूमि। इसीलिए वे लिखते हैं एनुर्गामा, साहित्य के इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों को उद्भव विलय की कहानी नहीं है, वह काल स्रोत में बहे हुए जीवन समाज की विकास गाथा है। ग्रंथकार और ग्रंथ उस प्राणधारा को सिर्फ इशारा करते हैं, वही मुख्य नहीं है। मुख्य है वह प्राणधारा जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप को प्रकाशित कर रही है। कल्पलता, यह बताने की आवश्यकता नहीं कि आचार्य द्विवेदी ऐतिहासिक स्रोत में प्रभावित जीवन समाज की विकसनशील प्राणधारा के तटस्थ दृष्टा नहीं, बल्कि उसे आत्मसात कर अपने वर्तमान के लिए इसका पुनर्निर्माण करने वाले विकासवादी इतिहासकार और आस्थावान आलोचक हैं। इतिहास आचार्य द्विवेदी के लिए केवल तथ्यों और ब्यौरों का संग्रह अथवा घटनाओं का कालक्रम संयोजन नहीं, वह मनुष्य की जय यात्रा का उद्घोष करने वाला काल देवता इतिहास विधाता है। आचार्य द्विवेदी ने पहली बार इतिहास को नहाते एवं अविच्छिन्न प्राणधारा के रूप में देखने की वह दृष्टि प्रदान की जो पूर्ववर्ती इतिहास लेखकों में देखने को नहीं मिलती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहासकार पर उनका आलोचक इतना हावी है कि आदिकालीन लोक भाषा काव्य के मूल्यांकन में विच्छिन्न ऐतिहासिक परंपरा बराबर उपेक्षित रह गई है। मोटे तौर पर शुष्क घटनाओं और तिथियों को इतिहास मानकर रासों की प्रामाणिकता के विवाद में उलझे हुए आचार्य शुक्ल की दृष्टिगत सीमा का प्रत्याख्यान करते हुए आचार्य द्विवेदी लिखते हैं इनोटिकामा, खेद की बात है कि उस दृष्टि की प्रतिष्ठा जो शुष्क घटनाओं और तिथियों को इतिहास समझती है, इसी का यह परिणाम हुआ कि देश के अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ उपेक्षित रह गईं। यदि इतिहास का अर्थ मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का अध्ययन है तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का इतिहास एकदम उपेक्षणीय नहीं है। इनोटिकामा कल्पलता, निश्चय आचार्य द्विवेदी के लिए शुष्क घटनाओं और तिथियों की अपेक्षा वे परिस्थितियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो एक युग के मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का अध्ययन करने में सहायक सिद्ध होती हैं। यही कारण है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उस युग के साहित्य को केवल रसपरक साहित्य की दृष्टि से न देखकर उसके अध्ययन की आवश्यकता पर इसलिए जोर दिया है क्योंकि वही साहित्य हमें इतिहास के अंधकार युग की टूटी हुई सांस्कृतिक परंपरा को जोड़ने में एकमात्र आदान प्रदान करता है। तंत्र साधना, सिद्धनाथ परंपरा, लोक भाषा काव्य के शोध परक छानबीन में इनके पीछे उस मूल्यवान सांस्कृतिक विरासत की खोजपूर्ण दृष्टि है जो इतिहास के तिमिराच्छन्न कुहासे में अपने समूचे युग के मनुष्य के सामाजिक विकास गाथा के साथ गुमशुदा परंपरा की पहचान कराती है। जहाँ इतिहास मौन है, साहित्य लुप्त है और परंपरा खंडित है, वहाँ व्यापक जन समुदाय के रीति नीति, आचार विश्वास, भाषा व्यवहार आदि विभिन्न जीवन पद्धतियों के बीच अंतर प्रवाहित उस प्रेरक शक्ति की खोज आवश्यक हो जाती है जिसकी मदद से इतिहास के मौन को तोड़ा जा सकता है और परंपरा को विकलांग होने से बचाया जा सकता है। इसीलिए आचार्य द्विवेदी लोक भाषा, लोक गाथा, लोकगीत परंपरा, कहावतों, लोकोक्तियां आदि के समाजशास्त्रीय अध्ययन पर जोर देते हैं और उस तथा कथित अंधकार युग के साहित्य की प्रकृति को पहचानने के लिए उस युग के अंतरप्रांतीय भाषा साहित्य के परिप्रेक्ष्य में उस खोई हुई अस्मिता की तलाश करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि महामानव समुद्र के रूप में फैला हुआ आज का भारतीय समाज नाना जातियों, धर्मों, संप्रदायों और मतवादों के संघर्ष और सृजन का वर्तमान स्वरूप है। इसलिए यदि अपनी परंपरा का सांस्कृतिक इतिहास जानना है और हिंदी साहित्य का अध्ययन करना है तो अपने पड़ोसी साहित्यों बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती आदि के लिखित अलिखित पुराने साहित्य का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश का सांस्कृतिक इतिहास इस मजबूती के साथ अदृश्य काल विधाता के हाथों सी दिया गया है कि प्रांतीय सीमाओं में बात का सोचा ही नहीं जा सकता। उसका एक टांका यदि काशी में मिल गया तो दूसरा बंगाल में, तीसरा उड़ीसा में और चौथा महाराष्ट्र में मिलेगा, और यदि पांचवा मालाबार या सिलोन में मिल जाए तो आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। इन ऑटोग्राम कल्पलता। ध्यान देने की बात है कि सांस्कृतिक परंपरा को जानने के लिए आचार्य द्विवेदी प्रामाणिक स्रोत के रूप में देशी भाषा, लोक कथाओं और किंवदंतियों को महत्वपूर्ण मानते हैं, संस्कृत के साहित्य ग्रंथों अथवा देशी भाषा साहित्य को नहीं। क्रांतिकारी भक्ति आंदोलन की जीवंत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के इस समाज शास्त्रीय विश्लेषण का मूल उद्देश्य यह है कि आचार्य द्विवेदी हिंदी साहित्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं और आदिकाल के लोकभाषा साहित्य को उसकी सामाजिक सांस्कृतिक भूमि और प्रेरक शक्ति के रूप में स्वीकार करते हुए मध्यकालीन हिंदी साहित्य की परंपरा को एक उत्थानमूलक ऐतिहासिक नैरंतर्य प्रदान करते हैं। अपने इस महत्वपूर्ण प्रयास से वे निश्चय ही हिंदी साहित्य का सांस्कृतिक इतिहास लिखने वाले पहले इतिहासकार सिद्ध होते हैं। यह आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि का पूरक प्रयास ही नहीं बल्कि उससे भिन्न नवनिर्माण की अगली सार्थक उपलब्धि है। सच पूछा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हिंदी साहित्य की भूमिका प्रस्तुत करता है और आचार्य द्विवेदी की भूमिका प्रस्तुत करता है और आचार्य द्विवेदी की भूमिका हिंदी साहित्य का सांस्कृतिक इतिहास। आश्चर्य है कि मार्क्सवादी समाजशास्त्री समीक्षा को नायक श्रद्धेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को मानवतावादी समाजशास्त्री समीक्षा के धनी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह महत्वपूर्ण स्थापना न जाने की ओर आस नहीं आती। इसीलिए महत्वपूर्ण पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना में संत साहित्य में योगियों की भूमिका पर विचार करते हुए लिखते हैं। भारत का विराट जनवादी सांस्कृतिक आंदोलन जिसे हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं, इन कनफटे जोगियों और वामाचारी सिद्धों की प्रेरणा का मोहताज न हो सकता था। आचार्य शुक्ल ने रसवादी दृष्टि से नाथों और सिद्धों की धार्मिक सांप्रदायिक रचनाओं को हिंदी साहित्य से बाहर निकाल दिया और उन्हीं का अनुसरण करते हुए डॉक्टर वर्मा ने न जाने किस मार्क्सवादी नजरिए से विराट जनवादी सांस्कृतिक आंदोलन की प्रेरक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को एक वाक्य में दरकिनार करते हुए भारत की उस महान सांस्कृतिक परंपरा को ही विकलांग बना दिया। माना कि ये कनफटे जोगी और वामाचारी सिद्ध एक प्रकार से कर्मकांड का खंडन करके एक दूसरी तरह के कृच्छ साधना जनित पाखंडों को शिकार हो रहे थे। पाखंड किसी तरह का हो गर्हित और त्याज्य है, किंतु क्या ये योगी और सिद्ध अशिक्षित अधशिक्षित या सामान्य जन समुदाय पर केवल अपने सिद्धई की धाक जमा रहे थे अथवा उनका या उनकी परंपरा का उस समाज पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा रहा था? मसलन जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव के सुदृढ़ आधार पर खड़ी प्रभुवर्गीय सामंती पुरोहिती हितों को पुष्ट करने वाली वर्ण व्यवस्था पर लगातार प्रहार करने से सामान्य जन समुदाय में कुछ न कुछ आत्मगौरव का भाव तो जागा ही होगा, क्योंकि जिन कारणों से संतों की सामाजिक भूमिका को प्रगतिशील माना जाता है सिद्धोनाथों में उनका। दूसरी बात यह है कि भक्ति आंदोलन किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक आभार पर मोहताज या था या नहीं, हिंदी भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र और बंगाल के भक्ति आंदोलन से मूलतः भिन्न क्यों है, इन पर डॉक्टर शर्मा ने विचार न कर आचार्य द्विवेदी की सांस्कृतिक स्थापनाओं की मनमानी व्याख्या कर ली है। द्विवेदी जी ने दक्षिण से चलने वाले भक्ति आंदोलन के विकास पर विचार करते हुए बताया है कि भिन्न भिन्न स्थानों में पहुंचकर वहां के क्षेत्रीय सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रतिपेक्ष में उसका अलग अलग विकास हुआ। हिंदी भक्ति आंदोलन दो भागों में कैसे और क्यों विभक्त हो गया, रामानंद की वैष्णव धारा कबीर और तुलसी में अलग अलग रूप क्यों धारण कर लेती है, आरंभ का संघर्षशील स्वर रक्षा के स्वर में क्यों परिवर्तित हो गया, इस अंतर्विरोधों की सच्चाई पर पर्दा डालकर भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य का सही मूल्यांकन कर पाना कठिन है। मैं यह नहीं कहता कि आचार्य द्विवेदी जी ने हिंदी भक्ति काव्य के इस अंतर्विरोध को स्पष्ट किया है, किंतु उनके इतिहास ग्रंथों और कबीर नाथ संप्रदाय मध्यकालीन धर्म साधना सुर साहित्य जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकों के समग्र अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी पक्षधरता लोकधर्मी सिद्धोनाथों सूफियों और सुर के प्रति अधिक है। तुलसी के लोग धर्मी भक्ति और उनके साहित्य के वे प्रशंसक है, किंतु उनकी विचारधारा के प्रति तटस्थ। उनकी दृष्टि में तुलसीदास यूनिटेड कामा लोक वर्ण आश्रम धर्म के पक्के समर्थक थे, पर उपासना के क्षेत्र में जात पात की मर्यादा को व्यर्थ समझते थे। यूनिटेड कामा बंद हिंदी साहित्य की भूमिका। इसलिए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि आचार्य द्विवेदी ने उस अंतर्विरोध को नजरअंदाज कर दिया है। दक्षिण के वैष्णव आचार्यों के मतों के आधार पर ही सूर और तुलसी भक्ति का मूल्यांकन करने वाले आचार्यों में इसी स्पष्ट सहमति का असहमति व्यक्त करते हुए लिखते हैं। जो लोग कुछ दक्षिणात्य आचार्यों के दार्शनिक और धार्मिक मतों का अध्ययन करके तुलसीदास और सूरदास के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं वे लोक मत के साथ अविचार करते हैं। सूर साहित्य इसलिए राम और रहीम की एकता स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए दृढ़ आधार प्रदान करने वाले साहित्य की सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका को नजरअंदाज कर केवल साहित्यिक प्रतिमानों के आधार पर उन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास से बेदखल करना अथवा उनकी अपेक्षा करना बेमानी होगा। ऐसा करके हमने केवल अपने साहित्य की सीमा को संकुचित कर लेंगे बल्कि उससे अपनी परंपरा का स्वाभाविक विकास भी खंडित हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य साधना का मूल लक्ष्य मानव जीवन की विकास कथा कहने वाले उस महान भारतीय परंपरा को विकलांग होने से बचाने का सकारात्मक प्रयास है।